ये 58 श्लोक हो गए थे। इसमें भगवान ने कुर्म का दृष्टांत दिया और आपको ये बताया था कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समन्वय होना चाहिए। कभी तो हमारा ज्ञान कहता है कि ये काम गलत है, लेकिन गलत समझते हुए भी, जैसे आप ये समझते हैं कि क्रोध करना गलत है, फिर भी क्रोध कर देते हैं, तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में आपस में विरोध हो जाता है। लेकिन जब मनोनिग्रह होता है तो आदमी की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों में समन्वय होता है। समन्वय जब सिद्ध हो जाता है तब ये चीजें स्वाभाविक हो जाती हैं, और जब तक समन्वय सिद्ध ना हो तब तक हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी है पड़ती है बार बार, क्योंकि गलती की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। कृष्ण, कभी कभी ऐसा लगता है कि पाप में इस मन को कोई जबरदस्ती ले जाता है, अनिच्छन अपि, नहीं चाहते हुए भी वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। वो संगति का दोष है, जैसे मैंने आपको एक दिन दृष्टांत देकर के कई बार समझाता हूं कि कर्ण ने द्रौपदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि कर्ण जैसे व्यक्ति से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। जो सुबह उठकर के दान देता हो, जिसने अपने कवच कुंडलों को दान कर दिया हो, जिसको ये मालूम हो कि सामने मौत है, यदि कवच कुंडल दे दूंगा तो क्या है, मेरी मौत है, ये सब कुछ जानते हुए भी उस व्यक्ति ने द्रौपदी के लिए ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, उसका कारण था दुर्योधन की संगति। इसको बोलते हैं अनिच्छन अपि, नहीं चाहते हुए भी कभी ऐसा कर बैठते हैं कि जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर वो बातें चुभती हैं आदमी को, यदि विचारशील है तो। इसलिए दोनों का तालमेल बताया, और वो कछुए के अंदर दिखाई देता है तालमेल। आप आगे का श्लोक जो बता रहे हैं ये भी समझने जैसा श्लोक है, ये 59 नंबर का। देखो, ज्ञानी में और रोगी में फर्क होता है, कभी देखा आपने? हॉस्पिटल में जाओ, रोगी कुछ खाने के लिए तैयार नहीं, कितने मनाते हो आप उसको, शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है कुछ। आदमी बूढ़ा होता है, कभी कभी मिलता है, आप लोग तो महात्मा नहीं हो, हम तो महात्मा है, कभी कभी कोई आता है बोलता है महाराज अब कुछ नहीं खाते, दो खांखरे खाते हैं बस। हमने कहा अभी लीवर सिकुड़ गया है, अब क्या खाओगे, लेकिन खाने की वासना अंदर रह गई। श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक बड़ा मजेदार है आज, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऐसा बताया। मैंने आपको कभी दृष्टांत देके बताया था, किसी ने बहुत बड़ा कोई अद्भुत सिद्धि का टीकाकार है, उसने लिखा है, यश्च श्रीस सुधामना पृथक कण गणान अत्यादरात स्वादुयुक्ता। श्री कृष्ण को लक्ष्मी जी अपने हाथ से बना करके 56 प्रकार का भोजन खिलाती हैं, और उस भोजन की थाली को देख के जो कृष्ण को प्रसन्नता होती है, जो आनंद आता है, प्रेम से खाते हैं, उतनी ही प्रसन्नता से कृष्ण सुदामा के चावल खाते हैं। यश्च श्रीस सुदामना पृथक कण गणान, कण मैंने वो चावल के टुकड़े, उतने ही आदर से खाते हैं। इंद्रियों से तो खाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वासना नहीं है वहां। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, यदि व्यक्ति विषयों को छोड़ता है जबरदस्ती, तो आदमी के अंदर वासना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए त्याग के मूल में समझ होनी चाहिए, त्याग के मूल में हट नहीं होनी चाहिए। हट पूर्वक किसी चीज को यदि छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं मन की गहराइयों में उस चीज के संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि मृत्यु काल में फिर वही चीजें सामने आती हैं। इसलिए कहते हैं विषया शब्द का अर्थ यहां पे है, विषय मैंने इंद्रियां, हां विषय और विषया अंतर है दोनों में। ये इंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं, कब, जब आप भोजन करना छोड़ देते हैं जबरदस्ती। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत व्रत करते हैं, लेकिन वासना नहीं छूटती है। यदि शरीर से मुक्ति का संबंध होता, शरीर से विषयों को छोड़ने से यदि मुक्ति का संबंध होता, तो मुझे लगता है कि हर बेटा अपने मां बाप की मुक्ति करवा सकता था। जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दो, खाना पीना मत दो, बात खत्म हो गई, और क्या मुक्त नहीं हो जाएगा वो। एक दिन चिल्लाएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो कुछ मांगेगा भी नहीं, फिर तो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मुक्ति के साथ में जबरदस्ती नहीं, इसलिए भगवान कहते विषया विनिवर्तन्ते। बहुत अच्छा श्लोक है। इंद्रियों से तो कभी कभी आदमी निवृत्त हो जाता है, और उसका उपाय क्या बता दिया, निराहार, खाना पीना छोड़ दो। शैतान से शैतान आदमी शिथिल हो जाता है, आपने देखा है जंगल में जब हाथी को पकड़ते हैं, आपने आपको देखा होगा, आपने देखा है, उसको 3-4 दिन खाना पीना कुछ नहीं देते, पकड़ में आ जाता है, बस में आ जाता है। लेकिन ऐसे बस में क्या फायदा, करने के क्या फायदा है, 10-15 दिन बाद फिर खिलाओ तो वही माहौत को मार देता है। ऐसे निग्रह का क्या फायदा है जो निग्रह कुछ समय के बाद इतना उग्र बन जाए कि निग्रह करने वाले की दुर्गति का कारण बन जाए वो। इसलिए भगवान कृष्ण के सिद्धांत से बहुत लोग सहमत नहीं होते, क्योंकि हकीकत में इनका ही सिद्धांत बिल्कुल एकदम जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। और आज तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जबरदस्ती मत करो आप, जहां जितनी ज्यादा जबरदस्ती है वहां उतना ज्यादा पाप है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्रता दो, इसका अर्थ ये है कि आदमी अपने विवेक का विकास करे। जैसे बच्चा है, खेलने के लिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अब क्या करे उसको, लेकिन जैसे जैसे उसके दिमाग के अंदर पढ़ाई का महत्व बैठता चला जाता है, पढ़ाई का महत्व उसके दिमाग के अंदर स्थिर हो जाता है, तो खेलना अपने आप बंद कर देता है। लेकिन दिमाग में महत्व तो बैठना चाहिए। साधक के जीवन में ऐश्वर्य का इतना गहरा महत्व है कि उसको लाख आप समझाओ ईश्वर की तरफ प्रवृत्ति होती नहीं है। कैसे प्रवृत्ति होगी उसकी, दृष्ट फल दिखता है। बोले प्रेमपुरी में जाओ, सत्संग में जाओ, सुबह उठो। अब ये जो है ये अदृष्ट फल है, लेकिन बिस्तरे पे लेटे हैं, एसी चल रहा है, वो दृष्ट फल दिखाई दे रहा है। अब अदृष्ट फल के लिए व्यक्ति दृष्ट फल का त्याग करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जीवन में जब अदृष्ट फल से आनंद आने लगता है। एक आदमी मेरी पहचान का अंधेरी में रहता है, तो कुछ बात ऐसी हुई तो हरिद्वार जाना है, कुछ ऐसी तबियत थी तो स्वामी रामदेव के यहां गए, यहां 8-9 बजे उठने वाला आदमी, वहां गया 8 दिन के लिए, बहुत बिजी व्यक्ति धंधे में सब। वहां से आया तो मेरे को मिलने के, बोले महाराज ऐसा जीवन हो गया मेरा, सुबह 4 बजे उठते थे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक बार वो दृष्ट फल मिल जाता है ना, फिर आदमी की प्रवृत्ति उसकी तरफ हो जाती है। वजन 6-7 किलो वजन घट गया, सांस फूलता था, सांस फूलना बंद हो गया। अब धीरे धीरे ये पता लगने लग गया, जिसको हम सुख समझते हैं वो तो धीरे धीरे आने वाली एक मौत है। ये उसको कोई दूसरा नहीं समझा सकता। जब उसका फल उसके जीवन में आता है तब उसकी तरफ उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अच्छा, इसलिए बता रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते, कैसे, निराहारस्य देहिना। इसलिए कृष्ण ने 6 अध्याय में जब वर्णन किया ना, उन्होंने कहा देखो युक्ताहार विहारस्य, इस चीज में पहले व्यक्ति को संतुलन बनाना चाहिए। यह अन्नमय कोष है, अन्न से ही चलता है, इसलिए साधना में जोर जबरदस्ती नहीं, साधना में चाहिए विवेक, और विवेक के पहले चाहिए सत्संग, और सत्संग भी थोड़ा शास्त्र सम्मत सुने, जीवन में प्रगति होती है, बात बाकी तो फिर ऐसे ही अपने ये आत्म प्रवंचना हो जाती है, फिर अपने को ठग लेते हैं, हम लोगों को लगता है हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन जिंदगी में कुछ होता नहीं है, इसलिए बता रहे। चलो तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अच्छा फिर इसमें मुसीबत क्या है भाई? तो आगे उत्तर दे रहे हैं दूसरी पंक्ति में, रसवर्जम, अंदर इतनी गहरी वासना रह जाती है, इतनी गहरी वासना रह जाती है, रस मैंने वासना, वर्ज मैंने छोड़ करके, वासना तो रह जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, बाहर से तो साधु मालूम पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा असाधु बनाने वाली जो वासनाएं हैं वो उसके अंदर मौजूद रहती है। तो असाधुता इतनी गहरी है और साधुता इतनी ऊपरी है कि साधुता तो दिखाई देती है लेकिन वो असाधुता नहीं दिखाई देती, वासनाएं बहुत गहरी है, इतनी गहरी है, इसलिए भगवान कहते हैं रस वर्जम, वासना अंदर रह जाती है और वो वासना के कारण शरीर छूटने के बाद भी पुनः शरीर में वहीं आना पड़ता है उसको भोग भोगने के लिए। चलो तो आगे क्या बताते हैं, लास्ट पंक्ति समझ लो अभी। रसोपि अस्य, भाई ठीक है बात समझ में आ गई, लेकिन ये वासना कैसे छूटेगी? माना कि भूखे रहने से इंद्रियों का समाधान होता है, वासना रह जाती है, लेकिन इस वासना का सल्यूशन क्या है, निवृत्ति का है कि नहीं, इसका कुछ उपाय समाधान? भगवान कह रहे हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसोपि, वासना भी निवृत्त हो जाती है जब साधक को आत्म साक्षात्कार होता है। मैंने आपको कहा था कभी, आपने सुना 50 बार तो भागवत सुनते ही हैं, परीक्षित को अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अभी कुछ सुनना है? डर है अभी? उसने कहा महाराज जी अभी डर नहीं है, जिस कृष्ण की चर्चा आप कर रहे थे और मैं जिसे देखना चाहता था उसको मैंने देख लिया, जिसको मैंने अपनी मां के गर्भ में देखा वहां मेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन वहां मैं मृत्यु से मुक्त हो गया, आज मैं उसी परमात्मा को अपने हृदय के अंदर देख रहा हूं। ब्रह्मा हम परम धामा पढ़ा होगा भागवत आप लोगों ने, अंतिम में परीक्षित को भगवान कृष्ण की अनुभूति अपने हृदय के अंदर होती है। उसने कहा ऐसा ही है जैसे मैंने मां के गर्भ में जिसको देखा था वैसा ही है, और मेरे को निश्चय ये है कि जैसे उसने मेरी मां को बचाया था वैसे ही वो मेरे को बचाएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा हो अपने पिता की गोद में जब आ जाता है ना, तो छोटे मोटे उसके दोस्त थोड़ी बड़े जो उसको जिसको देख के वो डरता होता है उनका फिर उसको डर नहीं रहता, कब क्यों पिता की गोद। ऐसे ही वो बोलता है कि अभी कृष्ण की ऐसी अनुभूति, इसका नाम है रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो कहता है कि अब उस परम के मैंने दर्शन कर लिए। बोले किस परम के? बोले बहुत विपत्ति के समय मेरी मां ने जिसको पुकारा और वो आया और विपत्ति से छुड़ाया और मुझे बचाया, आज मैं उसी को अपने हृदय में देख रहा हूं। वह चला गया मेरा। सुखदेव जी ने कहा मैं जाऊं? बोले जाओ। क्योंकि जिस चीज का भय था वो चीज अब खत्म हो गई है। इसको बोलते हैं रसवर्जम रसोपी अस्य, वो वासना भी निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। कैसे निवृत्त हो जाती है? तो परम दृष्ट्वा। क्योंकि आदमी की आकांक्षाएं होती हैं, आदमी का एक लेवल होता है। हम सब दिखते एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं हम लोग। बुद्ध के संस्कारों से हमारी क्या तुलना है? यदि आज का कोई महात्मा बोले कि मैं बुद्ध जैसा हूं तो कैसे कह सकते हो आप? हम लोग महात्मा बनकर के महल बनाने की कोशिश करते हैं और तब सोचते हैं हम बड़े आदमी हैं। उस आदमी ने मिला मिलाया महल छोड़ दिया। आदमी के अंदर भेद है कुछ। अंदर की स्थिति कुछ परिपक्व है। मैत्रेय जी पूछती हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज से, किम वित्तेन अमृतस्याम? अरे तुम बोलते हो कि ये पैसा है, ये तुम्हारे से तो लाख गुना ज्यादा जनक के पास में। और वो बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठ करके इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना प्रसन्न वो तुम्हारे चरणों में बैठ के होता है। मैंने कभी आपको कहा, भाष्यकारों ने लिखा है, अध्यात्म विद्या रसिको वही विदेह राज जनक। जनक ने अपने घर में एक सत्संग का हॉल बना रखा है, तुम मत बनाना है। ऐसा नहीं कहना कि हमको बनाने के लिए बोल, नहीं, मैं जनक की कथा सुना रहा हूं आपको। और उसने अपने जीवन में जितना ऐश्वर्य अर्जित किया, उस ऐश्वर्य के अर्जन करने के बाद उसको उतनी सुखी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता उसको उस छोटा सा सत्संग हॉल बनाने से हुई। क्योंकि इसमें भाष्यकार ने शब्द का प्रयोग किया इसलिए हमारे मन में आ गई वो बात। भाष्यकार ने दृष्टांत दिया है, स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञा, इस श्लोक के भाष्य में दिया है। बड़ी प्रसन्नता। मैत्री पूछती है क्या होगा इससे, और आज का साधक पूछता कि क्या नहीं होगा इससे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर वो नहीं है जहां जाकर के तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तुम्हारे चित्त की वृत्ति शांत हो जाए। सबसे बड़ा मंदिर वो है जहां सबसे ज्यादा पैसा चढ़ता है। और सबसे ज्यादा पैसा चढ़ने का मतलब सबसे ज्यादा स्मगलर जहां जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं तुम जाते हो तो तुम भी स्मगलर हो, लेकिन लगभग लगभग उसी श्रेणी में हो। है तो बात सब अंदर। वो उसका जो प्रश्न है उसने कहा इससे क्या होगा, किम स्यात, क्या होगा, और हम कहते हैं क्या नहीं होगा। बड़ा एक बुनियादी फर्क है इस बात में। जब हम ये समझते हैं इससे सब कुछ हो सकता है, तो उसको पाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी को मार सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इसी से सब कुछ होगा। और यदि आपको मालूम पड़ जाए इससे कुछ होने वाला नहीं है, मैत्रेयी कहती है किम वित्ते नाम, इससे होगा क्या? ये जिसके पास में था वो दुखी था, तेरे को दे दिया तू कहां सुखी हो गया? तुम मेरे को बोल रहे हो? विवेक मनुष्य को विचार करने के लिए प्रवृत्त कर देता है। तो वासना जो आदमी के अंदर रहती है वो एक बहुत विलक्षण होती है। इसलिए कृष्ण ने वासना के ऊपर बहुत जोर दिया, जबरदस्त जोर देते हैं। रस शब्दे रागे प्रसिद्धा, शंकराचार्य स्वयं लिखते हैं रस शब्द जो है वो राग में प्रसिद्ध है। देखो आपने एक विचार करना, जिंदगी में हर चीज से आदमी उब जाता है, लेकिन सुख से आदमी कभी नहीं उबता। किससे? सुख से। कभी सुख देखा? सुख से नहीं उबता। और आदमी की साधना क्यों? सुखी होने के लिए। त्याग क्यों? सुखी होने के लिए। संग्रह क्यों? सुखी होने के लिए। लक्ष्य सुख है। नारद जी महाराज ने, आप लोग तो यहां पे सत्संग स्रोत स्वाध्याय करते हो, छांदोग्य उपनिषद में परमात्मा क्या चीज है वहां आया। देखो हिंदुओं से ऊंचा किसी ने नहीं सोचा है, और हिंदुओं से नीचे भी किसी ने नहीं सोचा है। वहां पे लिखा है यो वै भूमा तत्सुखम यदल्प्यम तद्मर्त्यम नाल्पे सुखम अस्ति। परमात्मा ही सुख है। संसार में तुमने जो देखा है वो सब सुविधाएं हैं, और ये हमारी नासमझी है कि हमने सुविधाओं को सुख समझ लिया। सुख से कभी कोई उबता नहीं है, सब चीज से आदमी उब जाता है, सुख से नहीं उबता। इसलिए नारद ने कहा, इसलिए जब मनुष्य के विवेक का विस्तार होता है, विचार वो करता है कि जिस चीज को हम अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, हमारे जीवन की जो मंजिल है वो इसके माध्यम से हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके जीवन में साधन के प्रति संशय हो जाता है, आपको लगे ये कुर्सी मेरे को मिल जाएगी तो मैं सब काम कर लूंगा, तो आप उस कुर्सी को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, नहीं करते? मोदी ने नहीं देखा ना लोकसभा के प्रचार में, देखो कैसा बाप रे बाप है, बेचारे ने ठंडा पानी नहीं पिया, गर्म पानी पीता था। किसके लिए? हाँ, वो गलत है ऐसा नहीं कहता हूं। यदि उस व्यक्ति की सोच यह है कि जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो सबसे पहला लक्ष्य हमको उस चीज को प्राप्त करना। आपके पास कोई सत्ता है? सत्ता कोई बुरी चीज नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास में अधिकार नहीं है तो आप कैसे करोगे उस चीज को। इसलिए वेदांत दर्शन में भी आत्मचिंतन करने के पहले अधिकारी का निरूपण किया गया। अधिकारी कौन है? अधिकार संपन्न अधिकारी है। आपने कहा भाई ऐसा होना चाहिए, बोला तू कौन होता है बोलने वाला, तो क्या करोगे आप? अभी कोई बड़े बड़े, मैं कल देख रहा था पेपर, ये कोई बहुत बड़ा जो है ना गृह सचिव, उसको हटा दिया क्योंकि कुछ बदमाशी कर रहा था। तो यदि वो गुजरात का मुख्यमंत्री होता तो हटा सकता था क्या? उसी को हटा देता ये। तो इसलिए जीवन में जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी एक अपना महत्व होता है। अब ये भाई अब अधिकार वाले के ऊपर है कि वो उसका उपयोग क्या कर रहा है। तो पहले तुम्हारे पास में विवेक तो होना चाहिए, तुम्हारे पास में सड़ संपत्ति तो होनी चाहिए। यही तुम्हारे पास में नहीं है तो फिर क्या करोगे? इसलिए जब हम कोई भी तुलना करते हैं तो उस तुलना में जो अधिकार की बात आती है वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलो आगे चलो। अब ये कितने नंबर के श्लोक हो गए? 59 हो गया। अब ये 60 नंबर का श्लोक है, जरा सुनना जरा इसको, ये बड़ा काम का श्लोक है। शंकराचार्य ने इसके बारे में थोड़ी सी एक बात लिखी है। थोड़ा सा सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्य चिकित्सताम आदौ इंद्रियाणि स्वबसे स्थापितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम आह। उन्होंने शंकराचार्य ने कहा विचार कर लेना पहले किस रास्ते पे चल रहे को, मंजिल कौन है पहले ये विचार कर लेना, फिर उस मंजिल के हिसाब से आप जाते हो कभी यात्रा करने के लिए। यदि आपको हिमालय जाना है तो कुछ साधन सामान और रखना पड़ेगा, और यदि दुबई जाना है तो कुछ सामान और रखना पड़ेगा, कहीं गर्म जगह जाना है तो सामान कुछ और रखना पड़ेगा, ठंडी जगह जाना है। तो शंकराचार्य कहते हैं जो ज्ञान में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहते हैं, ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हैं, सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को पहले अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना जरूरी है। ये साधन है। क्या शास्त्र पूजा यदि करनी है तो देवम भूत्वा यजेत देवान, पहले देवता बनो फिर देवताओं की पूजा करो, नहाओ धो टीका लगाओ फिर ठाकुर जी के सामने बैठो। देवम भूत्वा यजेत देवान। यदि ये चाहते हो कि परमात्मा में बुद्धि स्थिर रहे, परमात्मा में बुद्धि लगे, शंकराचार्य एक प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न आता है, आप लोगों ने सुना है, के संति मित्राणी, आदमी के मित्र कौन है? यदि कहीं भी आप जाते हैं और 10-5 यदि आपके मित्र आपके साथ में हैं तो आपको काम करने में सुगमता हो जाती है। आप कितने भी भले आदमी हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन 10 आदमी आपकी टांग खींचने वाले हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी लाचार हैं। परमार्थ के पथ पर जब साधक चलता है तो उसको भी मित्रों की जरूरत होती है। तो बोले के संति मित्राणी, कौन है वो मित्र? बोले इंद्रियाणी, वहां निज शब्द का प्रयोग किया, निज इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां ही अपने मित्र हैं। बोले कब मित्र हैं ये? विजिताने यानी ताने मित्राणी, जब आप इंद्रियों को जीत लेते हैं तो ये इंद्रियां ही आपके मित्र बन जाती हैं। बुद्ध कहते हैं हम हमेशा प्रसन्न रहते थे, न कभी आंख प्रतिकूल चलती थी, न कभी कान प्रतिकूल चलते हैं, न कभी जीभ प्रतिकूल चलती है। जब हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति हमारे प्रतिकूल चलने लगते हैं तो शरीर का उन्मंथन हो जाता है। इसलिए आचार्य शंकराचार्य लिखते हैं, जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन करना हो, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना हो, चिकित्सताम मैंने करने की इच्छा रखता हो, वो बाद में इच्छा रखे। जैसे जो आदमी मंदिर जाने की इच्छा रखता हो वो आदमी पहले स्नान उस्नान कर ले, है कि नहीं? स्नान उस्नान कर ले। अच्छा, ऐसे ही जो आदमी ये चाहता है कि मुझे आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाए, शंकराचार्य कहते हैं आदौ इंद्रियाणी स्वबसे, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने की। यात्रा पर पुराने जमाने में लोग जाते थे यात्रा करने के लिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी गए होंगे कभी, नर्मदा परिक्रमा जाते थे ना, अभी भी जाते हैं महात्मा लोग, लेकिन अभी गाड़ी से जाते हैं, तो गाड़ी से भी जाते हैं। अभी एक महात्मा गए, अभी मेरे को बता रहे स्वामी जी, अभी होके आए हम, तो गाड़ी में सामान पहले अच्छी तरह से रख देना पड़ता है, और यदि वहां गए और कोई सामान भूल गए, वहां रोटी वोटी बनानी और तवा भूल गए ले जाना, तो क्या करोगे? ऐसे ही साधना करने के लिए चलो तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि पहले अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना, तब जीवन के जब मंजिल पाने में आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी, यात्रा तो सुगमता से हो जाएगी। अच्छा, तद अनवस्थापने दोषम आहा। अच्छा, अब दोष बता रहे हैं क्या? यदि आप कोई सामान छोड़ दिया और कोई साधन आप लेकर के न गए तो बड़ा दोष लग जाएगा। फिर है नर्मदा किनारे गुजरात में इस समय ठंडी का समय और कंबल भूल गए तो क्या होगा? फिर नर्मदा मैया की जगह जो है ना, ये मुंबई याद आएगी, मुंबा देवी याद आएगी। नर्मदा देवी को कौन पूछता है वहां? इसलिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, पहले उसका जो साधन है उस साधनों से संपन्न आप बन जाओ। साधन संपन्न आप होंगे तो फिर आपका कोई विरोध नहीं होगा। अच्छा, क्या अब श्लोक सुन लीजिए थोड़ा सा।
यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवम् मना।
बड़ी बहुत बड़ी बात कह दी कृष्ण ने। हे कृष्ण, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे साधना में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, यततो यपि लगे हैं प्रयत्न करने में, लेकिन इंद्रियां बस में नहीं है, और वो प्रयत्न कर जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करते हैं। किसी पुराण में कथा आती है, एक बार ध्रुव से मिलने की इच्छा नारद जी महाराज की हो गई। महात्माओं की भी इच्छा होती है, कोई अच्छा भगत हो तो मिलने की इच्छा होती है, चलो भाई भगत से मिल के आते हैं, कैसा भगत है देखें तो थोड़ा सा मिलना इच्छा हो। तो ध्रुव लोक गए, जब ध्रुव लोक पहुंचते हैं तो देखा उस गद्दी पे इतनी इतनी धूल जमी हुई है और ध्रुव बगल में बैठे हैं, बड़े उदासीन, बड़े दुखी, न जाने कौन सा गम इनको सता रहा है। नारद जी ने कहा, भैया क्या बात हो गई, हमने तो सोचा तुम्हारे पास जाएंगे कुछ मालपुड़ा वालपुड़ा खाएंगे, तुम तो ऐसे ही दुखी बैठे हो। उन्होंने कहा, महाराज देखो आराधना तो की लेकिन उस आराधना के मूल में द्वेष और क्रोध काम कर रहा था। इसलिए मुक्ति देने वाले परमात्मा से भी मैंने ये कचड़ा मांग लिया, देख लो आप। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, जिस आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त करना हो, सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्य चिकित्सिताम, जिसको सम्यक दर्शन करना हो, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जो चीज जैसी है उस चीज को वैसा समझना है, ऐसे ही समझने मत चले जाना। ग्रहण को देखने के लिए जाते हैं तो शीशे लगाने पड़ते हैं, नहीं तो ग्रहण तो दिख नहीं पाएगा, अंधे जरूर हो जाओगे। ऐसे ही यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके पहले उसका जो साधन है वो इंद्रियों के ऊपर आपको निग्रह, मैंने इंद्रिय निग्रह करना अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं करोगे तो दोषम आहा, तो दोष लगेगा। बोले जैसे ग्रहण को देखने के लिए आपको शीशा लगाना चाहिए और शीशा नहीं लगाया तो दोष लग गया, आंख फूट गई और क्या, यही दोष है। और इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, न विवेक है, न वैराग्य है, न चरित्र है, न कुछ है, ये सब कुछ नहीं होने पर यदि प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो दोषम आहा, वो दोष लग जाता है, पतित तो हो जाता है साधक। क्या है बोला उसको, देखो प्रयत्न कर रहा है, यततो यपि, प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन साधन बगैर का। प्रयत्न में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, साधन। प्रयत्न भी सफल तब होता है जब आपके पास में साधन महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी देखा आपने, कभी पढ़ो थोड़ा बहुत, बुद्ध की साधना में कोई बाधा नहीं आई, बाधा तो आई लेकिन उनको बाधा महसूस नहीं हुई। अंधेरा है, टॉर्च तुम्हारे पास है, भूख है तो अन्न तुम्हारे पास है, साधक अपने पास में सरसंपत्ति जब रखता है तो विपत्तियां साधक तक नहीं पहुंच पाती हैं। और यदि साधक के पास में सरसंपत्ति नहीं होती, हर विपत्ति आकर के छू करके चली जाती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, भाष्यकार ने इस पर गजब कर दिया, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, प्रयत्न भी कर रहा है, प्रज्ञावान भी है लेकिन इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। सबसे पहला जो काम था वो पहला काम किया ही नहीं, सबसे पहला काम करना था कि इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए था, विवेक पूर्वक, खाना छोड़ करके नहीं, विवेक से। इसलिए प्रयत्न भी व्यर्थ हो गया, साधना भी व्यर्थ हो गई, दुख का कारण बन गई। अब या हम लोग चले यात्रा करने के लिए और भाई कंबल भी नहीं ले गए, ये भी नहीं ले गए, तो फिर जो है ना केदारनाथ ही तुम्हारी बलि चढ़ा देता है, चल भाई भगत चले यहीं मर जाओगे और क्या करें। सब परमार्थ के मार्ग पे सबकी हत्या ऐसी होती है, सब साधनहीन होकर के निकलते हैं, सब मर जाते हैं। इसलिए देखो सुनने वालों के अंदर राग द्वेष ये सब है, क्योंकि साधना में कमी नहीं है, लेकिन जैसे ग्रहण देखने के पहले आंखों पे क्या लगाना चाहिए था ऐसा लगाया नहीं, ऐसे साधना करने के पहले निग्रह जो उसके नीति नियम हैं उन सब का पालन नहीं किया। इसलिए कहते हैं यततो यपि कौन्तेय, प्रयत्न करने पर भी बुद्धिमान होने पर भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि। इसलिए शंकराचार्य ने पहले कह दिया इसके भाष्य में कि चाहना हो तो सबसे पहले साधनों को रखो। हाँ, निकलते समय अपनी टिकट चेक कर लो, कहीं टिकट तो नहीं छूट गई, यहीं सामान तो कुछ नहीं छूट गया। क्या करता है फिर, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसवम मनः। ये फिर क्या करती हैं ये इंद्रियां, आदमी को फिर व्याकुल कर देती हैं। भाष्यकार ने लिखा आकुली कुर्वन्ती, और फिर आकुली करने के बाद क्या हो जाता है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः का अर्थ क्या कर दिया अंतिम में मालूम है आपको, जरा सुनो आप, प्रसवम प्रसयम प्रकाशम एवं पश्यतो विवेक विज्ञान युक्तम मनः। ये ऐसा जो मन है एक क्षोभ को प्राप्त हो जाता है, दुख हो जाता है। इसलिए साधना करना अनिवार्य तो है, लेकिन साधना के पहले साधनों पर ध्यान देना जरूरी है। जिस मार्ग पे आप निकलते हो और जिस मार्ग को आप छोड़ते हो, छोड़ने वाले मार्ग के प्रति दुख का निश्चय होना जरूरी है। बुद्ध ने यही कहा सारथी से, ये मुर्दा निकल रहा है ऐसे मैं भी मर जाऊंगा क्या, उसने कहा निश्चित तुम भी मरोगे, क्योंकि सारथी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने झूठ बोलने की। उसने कहा तुम भी मरोगे, उसने कहा रथ वापस ले चलो, ऐसी यात्रा हमें नहीं करनी जिस यात्रा की मंजिल मौत है। बस जीवन की तलाश करो, और यहां कहीं जीवन मिलने वाला नहीं है। फिर एक जो जिज्ञासा होती है, फिर जो एक खोज होती है, एक मंजिल की तरफ जो बढ़ना होता है, फिर जीवन में उसी को बोलते जो एक आप नहीं बोलते, एक टर्निंग पॉइंट है वो जीवन का। ये निश्चय कर लिया उसने कि हमको ऐसी यात्रा करनी नहीं जिस यात्रा की मंजिल मौत है। और सारथी नहीं बोला, उसका गुरु कोई तुम्हारे जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक लाख हाथ ऐसा कुछ कोई नहीं है, वो उसका गुरु तो रथ हांकने वाला है और रोज मौत देखता है। रोज मौतों का गवाह है वो। शमशान घाट पे जलाने वाले को वैराग्य नहीं होता, एक मुर्दे देखने से वैराग्य कैसे हो गया। लेकिन वो इतना एक गहरा निश्चय, शंकराचार्य ने कहा कि साधना के पहले फिर यहां कहीं जीवन को तलाशने की कोशिश नहीं की गई, दृढ़ निश्चय हो गया यहां कहीं जीवन मिल नहीं सकता। फिर एक जो यात्रा शुरू हुई वो यात्रा दूसरे लोक की यात्रा है, लेकिन उस यात्रा का एक बुनियादी सूत्र ये बन गया कि यहां जो है मृत्युना इदम सर्वम आवृतम, ये सब मौत की चादर से ढका हुआ है। सांसें चलती हैं, सांसों का चलना बंद हो गया तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि साधक को यदि ये इच्छा है कि मेरे को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो तो उसको सबसे पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर निग्रह करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर क्या होगा कि साधना करते करते बहुत आगे बढ़ने के बाद भी, जैसे भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव के मन में दुख रह गया, ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन के अंदर सब कुछ त्यागने के बाद भी ईश्वर के प्रति उतना आकर्षण नहीं होता जितना आकर्षण ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण होता है। उसका कारण कोई और ये नहीं है, क्योंकि साधना के पहले जो चीजें चाहिए थी वो चीजें हमारे पास में नहीं है। इसलिए बुद्ध क्यों सफल हो गए, शंकराचार्य क्यों सफल हो गए, महावीर क्यों सफल हो गए, क्योंकि उनका ऐसा इंद्रियों का निग्रह था कि उनके जीवन में कभी ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण पैदा हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता है। हजरत तुम जाओ बुद्ध के पास में बड़ी बड़ी सोने की और इतने बड़े बड़े हार लेकर के जाओ, तो पहले तो मुझे लगता है कि उसके पास तुम जा ही नहीं सकते हो, जाना ही मुश्किल है। आदमी को आदमी की मांग से तोला जाता है कि आदमी किस चीज से खुश होता है। एक छोटा सा फूल का हार डाल दो और आदमी, कभी कभी हमने देखा कोई आता है मिलने के लिए फूलों का हार ले आता है, हमने कहा मंदिर से कहीं उठा के ले आए हो कि भैया, विचार कर लेना पहले। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रयत्न करने पर भी, विचारशील होने पर भी, यदि कहीं इंद्रियों में बराबर नियंत्रण नहीं है तो पहुंचा हुआ साधक भी गिर जाता है। इसलिए आगे की चर्चा कल करेंगे 61 नंबर के श्लोक की।